भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं यही स्थिति देखने में आती है। हम बुराइयों का खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन हम भलाइयों का खुलकर समर्थन भी नहीं कर पाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, हमने कहां कहा कि बुराइयों का विरोध करो, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां कहीं कुछ भला है, जहां कहीं कुछ अच्छा है, हम उसको लेकर के गौरवान्वित नहीं होते। हमें आज भली चीज चुनौती नहीं देती, हमें आज बुरी चीज तो बुरा होने के लिए चुनौती देती है, लेकिन अगर कोई अच्छा करता है तो हमारे भीतर उल्टा असर होता है, क्योंकि वो अच्छी चीज चुनौती की तरह खड़ी हो जाती है कि देखो उन्होंने इतना बढ़िया करा और तुम कुछ नहीं कर पाए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जिसने अच्छा करा है उसकी कोई ना कोई बुरी बात ढूंढ करके उसे हाईलाइट करते हैं, ताकि उसका अच्छा किया हुआ हमारे लिए चुनौती ना बन पाए। वो करते हैं ऐसा, जरा कोई किसी की प्रशंसा करे हम चुपचाप सुनते हैं, और फिर बाद में धीरे से कहते हैं अभी आपको मालूम नहीं है उनके बारे में, हमसे कभी बैठना अकेले में बात करेंगे तब बताऊंगा क्या क्या बातें हैं। ठीक है, आप अभी तो जाओ। अब उसके भीतर एक कीड़ा चला गया। अब वो जो है जितना बढ़िया सोच रहा था, अब वो भी निम्नतम विचारों की तरफ चला जाएगा। असल में भली चीज कोई करे तो हमें एक चुनौती खड़ी होती है भले बनने की, और कोई अगर बुरा काम करे तो वो हमें चुनौती नहीं बनता, बल्कि हमें सेटिस्फेक्शन देता है कि कौन हम और बुरे हैं, देख लो उनको, देख लो उनको, देख लो सभी तो है। अगर कोई ये कहे कि क्रोध करना बहुत नेचुरल है तो हम कहेंगे एकदम एग्जैक्टली बहुत सही कह रहे हैं, वो तो सबको आता है। कोई पाप करने को कहे कि भली बात है, पाप करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो तो सब लोग करते हैं, तो हमें लगेगा हाँ हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि पाप करना अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ऐसी तो किताबों में बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन कोई बचो है उसे, क्योंकि अगर हम उस चीज को स्वीकार कर लेंगे तो वो चुनौती बन जाएगी हमको। एक हमारा पड़ोसी वो एक दिन हमसे बोलता है कि तू यार पूजा क्या करने लगा, मेरी तो जान की आफत हो गई। मैंने कहा भैया मेरे पूजा करने से तुम्हारी जान पर कौन सी आफत आ गई। तो बोलता कि मुझे घर में चार बातें सुनना पड़ती, पिता की और मां की, मां तो जान खाई लेती है, कहती है कि देखो फलाने का लड़का सुबह उठ करके पूजा करने जाता है, पढ़ाई भी तो करता है वो और पूजा भी करता है, तुम 8 बजे तक सोए रहते। पहले भी हम 8 बजे तक सोते थे लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन तुमने मुझसे 6 बजे पूजा करने जाना शुरू किया, तब तो ये तकलीफ मेरे लिए आ गई। अब बताइए आज अगर कोई भला करे तो वो हमें बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। इससे क्या मालूम पड़ता है, हमारी अपनी मानसिकता मालूम पड़ती, हमारे अपने पीड़ा का कारण कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारे अपने निम्नतम विचार, हमारा अपना घटिया किस्म का सोच, वो हमारे अपने दुख का कारण है। बाहर कहीं कोई दुख नहीं, बताइएगा किसी के पूजा करने से किसी को कोई दुख मिला है, क्या दुख दे रहा है वो, लेकिन हमने दुख उसमें से निकाल लिया। ऐसे ही हम यहां इस संसार में जो जो भलाइयां हैं वो सब हमें चूंकि चुनौती बन जाती हैं, इसलिए हम उनकी संगति करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जहां कुछ बुरा है हम उसके साथ जल्दी खड़े हो जाते हैं। हमें जो बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, बड़ा संतोष देता है कि ठीक तो है, सभी तो ऐसे हैं। अगर कोई किसी साधु की निंदा करे तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि फिर साधु बनने की चुनौती खत्म हो जाती कि सब देख लिया साधु जी ऐसे हो, तेजी से हम बने नहीं, अपन तो ऐसे ही ठीक है। अगर साधु को आप साधु मान लेंगे तो कोई चुनौती खड़ी हो जाएगी कि मैं भी मनुष्य हूं, वे भी मनुष्य हूं, और वे क्यों साधु बन गए, उनके भीतर इतनी साधुता कहां से आ गई, इतनी सज्जनता कहां से आ गई, मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये बात जो है बहुत मुश्किल में डाल देती। इसलिए हम कहीं कोई सज्जन है कहीं कोई साधु है तो उस पर कोई ना कोई दोष लगा करके और अपने मन को समझा लेते हैं कि यार सब ऐसे ही है, अपन भले हैं, अच्छा है, अपन जितना कर रहे हैं उतना ही ठीक है, उनको देख लो हमने। ये बहुत बहुत खतरनाक चीज हम लोगों के बीच डेवलप हो रही है। हमें जिंदगी भर कोई हमारे पांव दबाए, जिंदगी भर कोई पांव दबाए तो वो नहीं याद रहता, अगर एकाध दिन पांव नहीं दबाए तो वो ही पांव सिर पे मारने का मन होता है। ये हम लोगों का सोच है। हम उपकार क्षण भर में भूल जाते हैं, अपकार हम पूरी जिंदगी जो है याद रखते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है, हमारा अपना सोच घटिया है, हमारे निम्नतम विचार बहुत अधिक हम पुष्ट करते रहते हैं, किसी की भलाई कम हमें दिखाई पड़ती है, बुराई ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो समझ लेना तीन तरह के तो लोग हैं, एक वे हैं जो किसी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में सोचते हैं, दूसरे वे हैं जो घटनाओं के बारे में सोचते हैं, तीसरे बहुत रेयर केसेस में होते हैं जो आइडियाज और आइडियल्स के बारे में सोचते हैं, जो आदर्श के बारे में और नए नए अच्छे विचारों के बारे में और हमेशा अपना मन लगाए रखते हैं। बहुत बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे, अधिकांश लोग दूसरे के चारित्रिक मामले में दखल रखते हैं, कौन कैसा है, किसको कैसा होना चाहिए, और वो भी भली बातों के बारे में नहीं, बहुत हल्की बातों के बारे में, घटनाएं जो होती हैं भली घटनाओं के बारे में। अगर कोई अभी रास्ते चलते किसी को बचा ले तो कोई उस तरफ ध्यान नहीं देगा, और अगर कोई किसी ने धक्का दे दिया है किसी को और वो गिर गया है तो एक हुजूम खड़ा हो जाएगा, किसने मारा साहब, क्या कौन कौन है वो बताइए, ये क्या चीज है। बुराइयां आजकल बहुत जल्दी संगठित हो रही हैं, अच्छाइयों को संगठित होना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक भले आदमी के चारों तरफ अगर झांक के देखेंगे तो एक भी आदमी नहीं खड़ा दिखाई देगा उसका साथ देने वाला बाहर से, भीतर भीतर भले ही कहते हो कि है तो भला आदमी, लेकिन हम भले आदमी का बाहर समर्थन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मजबूरी में बुरे आदमी का हम साथ देते जाते, क्योंकि उससे हमें लगता है कि हमारी सुख सुविधा और भोग विलास की सामग्री ऐसे ही मिलेगी, बेईमानी से ही मिलेगी। आज अगर कोई ये कह दे कि ईश्वर है ही नहीं तो हम कहेंगे हम तो पहले ही जानते थे, हमें विश्वास ही नहीं था। और अगर कोई ये कहते कहते परेशान हो जाए कि ईश्वर है, भगवान है, तो फिर वो चैलेंज है कि हम भी बन सकते हैं, और हम ऐसे चैलेंज अब स्वीकार करने की मानसिकता नहीं रखते हैं। हमें बिना अच्छे बने कोई अच्छा कहे, हम सिर्फ इतना ही आज विचार करते हैं, सचमुच हमें अच्छा बनना है, या कहीं कोई अच्छाई है तो उसे स्वीकार करना है। इस तरह की मानसिकता पता नहीं कहां चली गई, इस तरह का सोच पता नहीं कहां हमारे भीतर है, तो हमारे सबके भीतर सोया हुआ है, हमने अपने ही किन्हीं वजहों से उसे अपने भीतर सुला दिया है, और इस समय जागृत है अगर तो बुराई हमारी जागृत है। हर एक आदमी के भीतर भलाई और बुराई दोनों होती हैं, जिसको जागृत करना चाहें। आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां, इदम शरीरम कौन्तेय कुरुक्षेत्रम धर्म क्षेत्रम अपि, वही कर्म क्षेत्र बन सकता है, वही धर्म क्षेत्र बन सकता है, उसी में हम चाहे तो बुराइयां उत्पन्न कर सकते हैं, उसी में हम फसल कांटों की बो सकते हैं, उसी में फसल हम फूलों की बो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपने सोच में हमें किसे शामिल करना है। हम चाहें तो घृणा द्वेष ईर्षा इन सब के बीच बो सकते हैं, और हम चाहें तो मैत्री प्रेम और करुणा के बीच बो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन इन दिनों खेती तो सब कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि बेक्रॉफ्ट जो कुछ भी फसल काटेंगे वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन फसल अकेले सोचने से अच्छी बुरी नहीं होती, जो बोया है उससे मालूम पड़ता है कि फसल कैसी होगी। हम निरंतर निम्नतम विचारों को अपने भीतर बोते हैं और फसल काटना चाहते हैं, सुखद और खुशहाल अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। नहीं, ये अपने आप को धोखा देना है, आत्म प्रवंचना इसको कहते हैं। किसी और को धोखा देना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने आप को धोखे में रखना, अपने आप को धोखा देना, ये बिल्कुल आत्मघात करने जैसी प्रक्रिया है। और हम लोग इन दिनों बहुत गौर से अपने भीतर, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूं,
आपसे कह रहा हूं, आप अपने बारे में सोचिएगा, मेरे बारे में मैं सोचूं, आप अपने बारे में सोचिए, सब अपने अपने बारे में सोचें कि कहीं मैं ऐसा हो तो नहीं गया हूं। अगर मैं ऐसा हो गया हूं तो मुझे दुख जरूर मिलेगा, और अगर मुझे सुख चाहिए है तो मुझे ये सब बातें अपने में से मिल करना पड़ेगी। एक बार एक आदमी जहाज में यात्रा करता था, जहाज डूबने डूबने को थी, मालूम उसने क्या किया, कमिट क्या किया, ईश्वर तक से। हम किसी को नहीं छोड़ते, अगर हमारे भीतर एक बार हमारे निम्नतम विचार पुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। मुझे उसके बीच में एक घटना याद आ गई कि कैसे पुष्ट होते हैं वे निम्नतम विचार, गांधी जी के जीवन की है वो घटना। गांधी जी को किसी ने बचपन में एक बच्चे ने मार दिया, वाय माँ काम में लगी थी, माँ वो पड़ोसी के बेटे को समझा देना, वो मुझे बहुत मारता है, मैं उससे कुछ नहीं बोलता हूं, फिर वो मुझे मारता है। माँ ने सुन लिया, जाओ खेलो, खेलने गया, फिर से पड़ोसी बच्चे ने फिर उसे मारा, तो गांधी जी ने फिर से आके कहा कि माँ मैंने कहा था कि आप समझा दो उसे, लेकिन वो समझता नहीं है, आप उसे समझाती क्यों नहीं है, वो मुझे मारता है। माँ अपने काम में लगी थी, माँ ने क्या जवाब दिया, जा तू भी उसे मार के आ। इतना सुनते ही गांधी जी ने मालूम क्या कहा था, अरे तू मेरी कैसी माँ है, उसे मारने से नहीं रोकती, मुझे मारना सिखाती है। ये हैं विचार जिन पर कि हमारा पूरा जीवन खड़ा हुआ है। बचपन से हम जिस तरह के विचारों का आसपास पोषण होते देखते हैं, बेईमानी का पोषण करते अपने परिवारजनों को देखते हैं, तो हमारे बेईमान बनने में कोई कमी नहीं रह जाती है, हमारे बेईमान बनने के अवसर पूरे होते हैं। और अपने परिवार में हम अपने बड़े जनों को कितनी भी मुश्किलों में गुजरते देखते हैं लेकिन ईमानदार देखते हैं, तो हमारे भीतर भी एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि हमें भी ईमानदार बनना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हम स्वयं भी घटिया बातों को पसंद करते हैं। आज अगर मैं पढ़ रहा था कल कि पुस्तक मेला लगा, आपको क्या कहूं, मेरे अपने मन की बात, मेरे मन में क्या आ रहा था कि काश मैं उस पुस्तक मेले में पहुंच पाता। मैं अपने अंदर कोई चीज आती है तो छुपाता नहीं, ईमानदारी से करूं, मेरे मन में आता वो देख करके, उनकी रैक देख करके, उनकी बुक्स देख करके, बड़ी बड़ी बड़े फोटोग्राफ दिए थे, पूरे दो पेज में निकला था कि एक बहुत बढ़िया, और पुस्तक मेला जिसमें 250 पुस्तकों के जो बुक सेलर्स हैं वो आएंगे और अपने अपने एग्जिबिट करेंगे, पुस्तकें लोग खरीदेंगे, और उसमें से और ऊपर लिखा था कि अकेली जानकारी हासिल करने का नाम ज्ञान नहीं है, अपने आप को जानने का नाम ज्ञान है जो पुस्तकों में से हमें मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं भी वहां होता और मैं उन सारी पुस्तकों को पढ़ता देखता। लेकिन आज अगर हम किसी से कहें कि पुस्तक पढ़ो तो वो कहता पढ़ूंगा, कौन सी वाली, जासूसी उपन्यास पढ़ूंगा, इंडिया टुडे पढ़ूंगा, जिसमें कि आधे कपड़े पहने लोग होंगे क्योंकि उनको पूरे कपड़े मिलते ही नहीं, या तो पूरे उतार दो या फिर पूरे के पूरे पहन लो। हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति लेकिन वही देखना चाहती, वही निम्नतम। इससे क्या मालूम पड़ता है, हम होना चाहते हैं अच्छे, हम होना चाहते हैं धार्मिक, बड़ी धर्म की चर्चाएं करते हैं हम, लेकिन जरा अपने सोच को देखना कभी कि कहां हमारा इंटरेस्ट है, कहां हमारा आकर्षण ज्यादा है। अगर यहां पर एक स्टॉल लगा दिया जिसमें कि बड़े बड़े राइटर्स की किताबें रख दी जाएं, लगा हुआ है स्टॉल, उसमें से कौन खरीदता है मुझे मालूम है, पूछता है कितने रुपए की, रख देता है। और अगर इसकी जगह पर 15 रुपए की इंडिया टुडे जिसपे एक रंगीन सचित्र बना होता, कब ले जाता पता नहीं लगता, दबा करके मंदिर में से ही खरीद के अभी रखवा दूं अगर, तो देखना उसकी बचेगी नहीं, एक नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूं आपसे, बताइए ऐसा है कि नहीं, इससे क्या मालूम पड़ता, इससे हमारे धर्मात्मा होने का वास्तविक रूप मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर जो घटिया बातें हैं वे ही बहुत चरम पर बहुत डोमिनेट हैं, उनका संस्कार बहुत प्रबल है। ये तो छोटे मोटे संस्कार है, जो कि कभी थोड़ी देर को पढ़ते हैं। इसीलिए तो फिर लोग कहते हैं कि जब तक सुनते हैं, जब तक धर्म करते हैं, तब तक तो लगता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। बाहर निकलते हैं तो फिर वही, क्यों? क्योंकि बचपन से वही डाला गया है, भीतर बीज उसी का बोया गया है, तो क्रॉप भी उसी की फसल कटेगी। हमें आने वाली पीढ़ी को क्या निम्नतम विचार देना है? जिन घटिया विचारों में हम अपने जीवन को बिता चुके हैं, क्या वही हमें ट्रांसफर करना है आगे आने वाली पीढ़ी को? सोच लीजिएगा। बहुत बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने सोच को बदलें, हम अपने सोच को बहुत व्यापक और बहुत अच्छा बनाएं। दोनों ही चीजें आज बहुत कूप मंडूक हो गए हम, और बहुत अपने तक ही सीमित हो गए। किसी का भला बुरा हमें सोचने का वक्त नहीं है। बुरा सोचने का वक्त फिर भी है, किसी का भला सोचने का वक्त फिर भी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। हम सहसा विश्वास नहीं करते अच्छी चीजों पर, बुरी चीजों पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वो कहानी रह गई जो मैं आपसे कह रहा था कि एक जहाज में एक व्यक्ति जाता था और जहाज डूबने को थे। निम्नतम विचारों की बात है। भगवान से भी हम ब्लफ कर लेते हैं, भगवान को भी हम धोखा देते हैं। जिनसे हम दो बातें अपने कल्याण की सीखते हैं, उनको भी हम धोखा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही चीज है। क्या किया मालूम उसने? जब जहाज डूबने को हुई, सबने ईश्वर की प्रार्थना करी, तो उसने भी करी कि ईश्वर मेरे, अगर तू कहीं है तो। वैसे तो मुझे विश्वास नहीं है कि तू कहीं है, पर अगर कहीं है तो सुन मेरी बात। दुनिया भर को मैंने रिश्वत दी और सैकड़ों काम बनाए, आज तेरा भी नंबर है, आज तेरा भी नंबर। बिल्कुल यही भाषा, बोलने की भाषा अलग होती, सोचने की भाषा है। ये मैं बोल के बता दे रहा हूं आपको, आप सोच रहे हैं उस तरह। मेरी पूरी हवेली, जैसे उसके मन में आया हवेली, हवेली तो 9 लाख रुपए की हवेली थी उसकी, 9 लाख रुपए की अगर वो सेल करे तो। कहता कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैं बच गया तो पूरी हवेली तेरे नाम पर दान कर दूंगा। बड़ी हिम्मत का काम किया उसने, बहुत बड़ी रिश्वत दी थी ईश्वर। और संयोग ऐसा हुआ कि बच गया वो, बच गया तो लोगों ने कहा कि जनाब याद है? उसने कहा याद है, नहीं तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, बोली भी बातें। लोगों ने घेर लिया कि कब बेच रहे हो, तो बेच करके वो पैसा जो है दान करना पड़ेगा। उसने कहा बेचूंगा आराम से, वकील से सलाह करूंगा, ऐसे थोड़ी। देखो अब वो कह रहा है कि नीचे आने के बाद जब डूब रही थी तब तो किसी से सलाह नहीं करनी थी, तब तो जो है पूरी 9 लाख की बिके तो 9 लाख रुपए की दान कर दूंगा पूरा। लेकिन अब कह रहा है कि वकीलों से सलाह करूंगा, देना तो है मुझे, ये तो मैं बोल चुका हूं। और एक दिन लोगों ने देखा कि हवेली नीलाम हो रही है, और मालूम मजा क्या था, हवेली के साथ एक बिल्ली उसकी पालतू, वो भी बेची जा रही थी। और देखना मजा, जब लोगों ने पूछा कि कितने रुपए की, उसने कहा हवेली 1 रुपए की, बिल्ली 9 लाख रुपए की, कौन खरीदता है? हवेली बिना बिल्ली के खरीदे नहीं मिलेगी। हाँ, हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की 9 लाख रुपए, टोटल दोनों मिलेगी, जैसे कि कुंजी और टेक्स्ट बुक। कुंजी 10 रुपए की, टेक्स्ट बुक 1 रुपए की, लेकिन जब भी टेक्स्ट बुक खरीदी जाएगी तब कुंजी अवश्य लेना पड़ेगी, अनिवार्य रूप से। अगर आप हवेली खरीदेंगे तो आपको बिल्ली खरीदना ही पड़ेगी, और हवेली की कीमत 1 रुपये ऑनली, सिर्फ 1 रुपये। और तो बिल्ली की बताओ, बिल्ली 9 लाख रुपए की। सारा दिन नीलामी होती रही, और आखिरी में लोगों ने कहा कि अपन को क्या करना, अपन को हवेली खरीदनी है, सीधी 9 लाख की बेचता तो खरीदनी है, बिल्ली के साथ देता बिल्ली की 9 लाख और उसकी 1 रुपया खरीदो। खरीद ली, मालूम जहां उसने क्या किया, 1 रुपये धीरे से दान किया। हवेली की कीमत दान करना थी, बिल्ली की दान करना था, 9 लाख रुपये रख लिया। ये है हमारे निम्नतम विचार, ये ध्यान रखना। उस पर हमें हंसी आ रही है, पर अपन अगर ऐसा करें तो अपने को रोना आना चाहिए। किस तरह हम धर्म के क्षेत्र में भी आदमी ने किया, और दूसरी चीज उच्चतम विचारों का भी अपना मनमानी अर्थ निकाल लेना, ये हमारी दूसरी क्वालिटी है। हालांकि ये डिस्क्वालिटी है, कल को कहें लेकिन डिस्क्वालिटी क्वालिटी समझो। निम्नतम विचारों में हम संतुष्ट होते हैं और ऊंचे विचारों के अपने मनपसंद अर्थ निकालते हैं। जैसे कि एक ऊंचा विचार है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, बहुत ऊंचा विचार है। इसका इसके मायने क्या है कि शरीर की ज्यादा सेवा पहले करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमने अपना अर्थ निकाल दिया। आप ही खुद कह रहे हैं कि जब शरीर नाशवान है तो भोग लो, जितना भोग सको, निकल जाना है जब तुम्हारी आनंद से हो, और आत्मा अमर है। आज कल तुम जल्दी कह तो पड़ी वह तो अमर है, कल कर लो करना है आत्मा को। जी हमारे अपने अर्थ है, उच्चतम विचारों के अपने मन माने अर्थ हम निकालते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि ये संसार असार है तो हम कहते हैं कि भैया बहुत अच्छी बात कही आपने, संसार में से जो कछु मिल जाए, हाथ लग जाए, भगे भूत की रंगोटी भली, कछु तो हाथ में आ जाए, तो हम कहते हम तो इसीलिए संसार में लगे हैं क्योंकि असार है, पता नहीं उसमें भी कोई ऐसी चीज मिल जाए। वैसे तो सर असार हम भी मानते हैं, हम ऐसा कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि असार है इसलिए इसमें आशक्त नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आत्मा में शुद्ध बुद्ध एक निरंजन स्वभाव है, आत्मा का जो पवित्र हो सकती है ठीक है, पवित्रता जब उसका स्वभाव है तो हो जाएगी पवित्र। तो समय आएगा, काल अवधि आएगी तो हो जाएगी। अपन को क्या करना, उसका अपन को बैठे बैठे बेईमानी करते रहो, जब आत्मा का स्वभाव ही अच्छा है तो हो जाएगी किसी ना किसी ने भवि। हमें क्या करना, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि आत्मा का स्वभाव ही निर्मल है, हमें प्रयास का करना निर्मल बनाने का तो है। हम चाहे कितनी बेईमानी करते रहे, स्वभाव आत्मा का शुद्ध निर्मल है, इसलिए हमें बनाने की निर्मल कोशिश नहीं करनी। ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं उच्चतम विचार। ये हमारी अपनी दूसरी दुख के कारण में एक दूसरा कारण है। और तीसरी बात, हम हमेशा इस बात की फिक्र में रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। हमें हमेशा संसार में क्या हो रहा है, कौन किस तरह से जी रहा है, कौन किस तरह से रह रहा है, इस सब में हमारा बहुत इंटरेस्ट है। आप गौर से इस चीज पर विचार करना, दूसरे के संदर्भ में हमारा पूरा जीवन है। आज तक हम जो जीवन जिया अपने लिए बहुत कम जिया है, दूसरे के हिसाब से जिया है। अच्छे कपड़े पहनने का मकसद क्या है मुझे बताएं, थोड़ा विचार करके बता दें, कोई बात नहीं, आज नहीं कल विचार करके बता दें, या कि जो मैं बता रहा हूं उस पर विचार कर दें। मैं अच्छे कपड़े पहन के अच्छा दिखना चाहता हूं या कि दूसरे को अच्छा दिखाना चाहता हूं, या कि दूसरा अच्छा नहीं है ये साबित करना चाहता हूं, विचार कर लो ना। और तीसरा ही विचार होगा इसमें कि देखे अभी तक ऐसे देखे नहीं होगे तुमने, तुम्हारे फादर फोर फादर में भी नहीं देखे होंगे, कह रही है अभी, लेकिन भीतर तो यही भाव है कि देखे अभी लेटेस्ट ले जाए, देख लो तुम भी। मैं सुंदर किसी में नहीं, लोग मुझे सुंदर कहेंगे उतने ही नहीं, दूसरे को मैं असुंदर साबित कर दूंगा अपने कपड़ों की सुंदरता के सामने। कहीं ऐसा भाव तो नहीं रहता, अधिकांश मौकों पर शायद ऐसा ही बात विचार आता है। दूसरे के संदर्भ में ही हम अपने पूरे के पूरे जीवन को जीते हैं, दूसरा कैसा है इसमें हमारा सारा इंटरेस्ट है। मैं कहता हूं मुझे कैसा होना चाहिए, इसमें तो बहुत थोड़े से लोगों का इंटरेस्ट है। मैं जैसा हूं उससे मैं असंतुष्ट हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं बुरा हूं इससे मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूं, नहीं मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं असंतुष्ट हूं, मेरे पिता जो है मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते इसलिए बेटा बेटा तो असंतुष्ट है, लेकिन उसके बाहर लोग घूमना चाहिए और वो बाहर घूमता है और अपना काम नहीं करता है, अपना कर्तव्य नहीं करता, इससे वो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है। उससे अपने स्वयं से असंतुष्ट नहीं है कि उसे जो करना चाहिए वो नहीं करता, नहीं, उसके फादर ने हमेशा उसके लिए कभी कोई बढ़िया सी चीज नहीं करके रखी, ना अपनी संपत्ति दी है या कुछ भी तरह से दे दिया उनकी ईमानदारी के चलते। आज ऐसे अर्थ देंगे, पिताजी ईमानदारी में का पाओ आपने, जा बताओ हमारे बच्चों को ठीक से खुआ नहीं है आपने, हमने दो पैसा जोड़ रहा है और हमें ले रखा है अपनी ईमानदारी, हमें जो है हमने उनसे कर दी। हम पिता की ईमानदारी से ये शिक्षा लेते हैं। अब वे दिन नहीं रहे कि जब आदर्श का लोग आदर्श को फॉलो करते थे, अब तो आदर्श को प्रिसाइज करके और अपने जीवन को उस आदर्श से विमुख करने के दिन दूसरे के संदर्भ में हमेशा मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है ऐसी चिंता नहीं है। इन सब बातों पर हमने विचार करा, लेकिन इनसे बचने का कोई उपाय है कि नहीं? हम क्या करें? हमारे अंदर बचपन से निम्न विचारों की और बढ़ाई गई है, बीज डाले गए हैं, अब हमारा कोई वश नहीं है। चलिए हमें हमेशा ऊंचे विचारों के मनमाने अर्थ निकालने के लिए प्रेरित किया गया है बचपन से। बताइए हम क्या करें? हम वहां भी मजबूर हैं। और हमने हमेशा अपना जीवन दूसरे के संदर्भ में जीना शुरू किया, दूसरे को देख देख करके हम अपना जीवन शुरू करते हैं और दूसरे के अंदर जो कुछ भी बुरा है उसको हम जल्दी ग्रहण करते हैं, जो कुछ अच्छा है उसे हम ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ। ये भी हमारी आदत में शुमार है। अब ऐसी स्थिति में करें क्या? इस पर तो हमने विचार कर दिया। तीन ही चीजें हैं भैया जो की जा सकती, इन तीन के अगेंस्ट में तो नहीं कहूंगा, इन तीनों से ऊपर उठने के लिए, इन तीनों से बचने के लिए तीन चीजें हमारे हाथ में हैं। सबसे श्रेष्ठ संसार में कुछ है तो वह है अपनी परम विशुद्ध अवस्था जिसको हम परमात्मा कहते हैं। क्या हम परमात्मा के रोज दर्शन और उनका गुणानुवाद कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर दूसरे की प्रशंसा करने और दूसरे की भलाइयां देखने की दृष्टि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हां, यदि हम रोज अपने आदर्श को, भगवान हमारे आदर्श हैं, ईश्वर हमारे आदर्श हैं, अगर रोज हम उनके दर्शन करते हैं और रोज ये विचार करते हैं कि बनना तो मुझे भी ऐसा ही था, तो ये विचार मेरे भीतर धीरे धीरे गिरता जाएगा और मेरे अंदर से जो बुरे विचार हैं वो हटे बिना नहीं रहेंगे। कम से कम उतनी देर से, कम से कम जितनी देर मैं ईश्वर के सामने खड़ा हूं, उनसे रूबरू हूं, उनको याद कर रहा हूं, उनका गुणानुवाद कर रहा हूं, उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले रखा है श्रद्धा दर्शन। जहां कुछ श्रेष्ठ है उसे रोज देखना, जैसे कि जहां कुछ गंदा है वहां रोज देखने का मन होता है, ऐसे ही जहां कुछ भला है, जहां कुछ श्रेष्ठ है उसे रोज देखना, उसके रोज दर्शन करना, और उस दर्शन से हमारे भीतर किसी दिन ये ख्याल आ जाए कि हां सचमुच मुझे भी ऐसा बनना है। आप आश्चर्य करेंगे, जो बहुत बुरे लोग हैं वे भी अपने भीतर आसपास किसी अच्छाई को देखकर अपने विचारों को बदल देते हैं। मैंने अभी अभी यहां आने से पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, पर किताब पलट रहा था, इंटेंशनली पलट रहा था कि शायद कोई नया उदाहरण जो मैंने नहीं सुनाया हो कभी और मुझे आ जाए ध्यान में। आपको तो एक मिनट लगना है सुन करके, अच्छा लगा तो ताली बजाना नहीं है और नहीं अच्छा लगा नहीं समझ में आया तो चुप रह जाना है। लेकिन मैंने कई बार महसूस किया है कि हजारों पेज पढ़ने के बाद एक आध चीज जो है वो प्राप्त होती है। एक बार मुझे 2000 पेज पढ़ने के बाद एक वाक मिला था, तो मैंने अपने हाथ से अपनी पीठ पर पटाई थी कि पढ़ना सार्थक हो गया। 2000 पेजों के पढ़ने के बाद एक सेंटेंस मिल गया, ठीक है चलेगा, वो एक श्रेष्ठ विचार। क्या ऐसी लत हमारे भीतर है कि हम श्रेष्ठ विचारों को गंदगी के बीच में से भी कोई श्रेष्ठ विचार, जैसे कि कीचड़ के बीच में खिला हुआ पानी, ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए। ट्रेन में एक चोर यात्रा कर रहा था, उस समय की बात है जबकि देश आजाद नहीं हुआ था और लोग सत्याग्रह कर रहे थे। आपको पढ़ना हो तो किताब का नाम तो मुझे याद नहीं, पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किताब है, उसमें से पढ़ा है। वो लिखते हैं कि वो चोर यात्रा कर रहा है, अचानक उसने देखा कि एक कलश पर रखा हुआ, खुला रखा, जिसमें पैसे रखे और एक बूढ़ा सा आदमी उसके पास बैठा है, वो उसकी रक्षा करने बैठा है और उसके ऊपर एक छोटी सी किताब भी रखी है, उसने जो कलस्तर में पैसे हैं उसके ऊपर एक किताब सी रखी है। उसने कहा बड़ा आसान तरीका है, इसमें क्या देर लगी, 20 साल हो गए उसको ट्रेन में चोरी करके, वो तो बहुत माहिर था उसमें। उसने कहा बूढ़े की तो वैसे ही कमजोर आंख है, कहां देख पाएगा, और उसने बड़ी सफाई के साथ और वो कनस्तर पार कर दिया। चोरी करी उस कनस्तर की, लेकिन चोरी करने के बाद अकेले में उसने देखा कि ये कौन सी बुक है, वो बुक नहीं थी, वो तो रसीद बंदी थी जिसमें लिखा था सत्याग्रहियों के लिए आप भी मदद दीजिएगा, ये मदद सत्याग्रहियों के लिए। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ, बहुत ग्लानी से भर गया कि मैंने कहां हाथ डाल दिया, 20 बरस तक की चोरी से जितनी ग्लानी कभी नहीं हुई उतनी आज ग्लानी हुई। और मालूम उसके जीवन में पहली बार एक श्रेष्ठ विचार आया, उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, सब में कुल मिला के 22 रुपए थे और उसने उस कनस्तर में वो 22 रुपए डाले। उस रसीद बंदी के पीछे लिखा कि वैसे तो मैं चोर हूं और मैंने ये कनस्तर चुरा लिया था, लेकिन ये बाद में मालूम पड़ा कि इसने सत्याग्रहियों के लिए धन इकट्ठा किया है, मेरा भी स्वीकार करिएगा, इसमें मेरा भी थोड़ा सा धन है, वे सब लोग देश को आजाद कराएं और मैं जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक इस काम को नहीं करूंगा। एक छोटी सी चीज और हमारे अंदर ऐसा कोई विचार आता है क्या, कभी झटके से आ जाए, बल्कि आ जाए, ऐसा होता है? कितनी बार हम देखते हैं लोगों को अच्छा करते, लेकिन कभी हमारे जीवन में कितनी बार हम भलाई करते लोगों को देखते हैं? ईश वंदना हमारे जीवन में, अगर एक बार ईश वंदना सिर्फ भगवान के दर्शन और उनका स्मरण ही नहीं है, मैं तो सोचता हूं कि अच्छाइयों का स्मरण और अच्छाइयों का दर्शन ही ईश दर्शन है। जहां जहां भी अच्छाई है वहां ईश्वर है, जो मंदिर में बैठा हुआ है वो कहीं और भी दिखने में आता है, वो हमारे भीतर भी दिख जाता है। जब जब हम अच्छे होते हैं तब तक हम अपने भीतर बैठे ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। क्या अपने जीवन में हम ऐसा ईश दर्शन आदत डाल लें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ज्ञान की आराधना करना दूसरी चीज है। हमेशा जहां भी भली बातें सुनने पढ़ने, अभी तो देखने में आ रही है लेकिन सुनने और पढ़ने में आए, तो उन भली बातों को जरूर से महत्व देना। हम लोग न भली बातें पढ़ने की आदत डालते हैं, अच्छी चीज पढ़ने की, अच्छे विचार पढ़ने की आदत डाले हैं, रोज रोज पढ़े। ठीक है, उन विचारों से हम ये बहुत जल्दी कह देते हैं, बेटे इतने अच्छे अच्छे विचार पढ़त हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़त हैं, मैंने देख तो उनको जीवन कैसे हुआ, रहने दो, पढ़ते तो हैं, हम उसमें भी ये गंदगी निकाल लेते हैं कि हमने बहुत देखी पढ़ने का लोगों को, अकेले पढ़ जा रहे हैं और खुदा की बेईमानी करते हैं। जब मैं कहूंगा इस बात को तो दूसरे ढंग से कहूंगा, मैं भी कह देता हूं कभी कभी, अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं कि पढ़ करके अपने जीवन को नहीं बदले, मैं वो कह रहा हूं कि ठीक ऐसा कहना पड़े जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए। ज्ञान की आराधना के बारे में क्या है, जहां किसी ने थोड़ा सा भी अपने ज्ञान के द्वारा आचरण को बदल लिया है क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते? जहां किसी ने बहुत अच्छी बातें कहीं लिख रखी है क्या हम उस व्यक्ति को याद करके उन अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते? ज्ञान की आराधना भी बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे हम अपनी अज्ञानतावश भी बहुत सारी घटिया बातों को अपना लेते हैं, अगर थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाए। मैं अभी एक चीज और पढ़ रहा था, वो लेकिन वो गड़बड़ है, लेकिन आपको सुनाएंगे तो आप पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं क्या क्या करता रहता हूं, कब पढ़ लेता हूं, वैसे तो अधिकांश आपके बीच में ही रहता हूं, लेकिन उसमें लिखा बच्चन परिवार के बारे में लिखा संस्मरण में लोगों ने कि मैंने बहुत लोगों को फिल्म में काम करते देखा है, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स को मैंने देखा जिसने कभी भी फिल्म में काम करते हुए अपने मुंह से कोई असंस्कृत फूहड़ शब्द किसी के लिए नहीं कहा, जिसने कभी भी किसी को भी बुरा नहीं कहा, जब भी जवाब दिया तो हंसते जवाब दिया, ऐसा भी शख्स। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसी जगह रहकर के भी इस तरह की क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अच्छी चीजें पढ़ने की आदत है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, हमारे पास बोलने के लिए शब्दों की दरिद्रता नहीं है कि हम घटिया शब्द बोलें। जो ज्ञान की आराधना करता है उसके पास न घटिया सोच होता है, न घटिया बोलने के शब्द होते हैं। भले ही उसके जीवन में अभी वो सारी बातें न आ पाई हों, लेकिन उसकी वाणी में और उसके विचारों में तो वो चीज आती ही है। और एक दिन विचार और वाणी जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहती है। तो मुझे पढ़कर तो बड़ा सुखद लगा कि अभी भी लोग इस तरह के हैं। आप समझ गए होंगे, बच्चन कहने से सभी समझ जाते हैं, सब फेमस हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने मार्क की कि कभी भी हमने उनको फिल्म इंडस्ट्री में और भी लोगों को देखा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हमने उस आदमी को कभी भी असंस्कृत फूहड़ तरीके से बोलते और व्यवहार करते नहीं देखा। बहुत शालीन और बहुत सुसंस्कृत। और हम और आप जो कि एक सुसंस्कृत और बहुत शालीन परिवार में जन्म लेते हैं और बाहर लोगों से जिस तरह घटिया ढंग से पेश आते हैं, घटिया ढंग से बोलते हैं, घटिया ढंग से सोचते हैं, उस पर हमें लानत आनी चाहिए। मैं तो ऐसी भाषा आपके यहां आकर के बोलने लगा हूं, ऐसा लानत शब्द ही बोल दिया मैंने आज, वो पढ़ने का असर होता है। मुझे नहीं लगता कई बार कि हम कैसे तो कर रहे हैं, कैसे तो जी रहे हैं, कैसे हम हैं। नहीं, ऐसे तो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा तो हमारा स्वभाव नहीं है, फिर हम क्यों ऐसा करें। ये लगने लगता, मुझे खुद भी बैठे बैठे ये बात आने लगती, अभी बैठे बैठे। और जब उनको उठा करके और वहां ले जा रहे थे तो मेरा मन था कि किसी के कंधे पर सिर रख के फूट फूट के मैं रो लूं। आपसे कुछ नहीं छिपाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बातें तो सब जानता हूं, क्या कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, पैर दे सकते हैं, आप आंख दे सकते हैं, आप दो पैसे दिखाएंगे कि ये क्या दे सकते हैं आप, और उसके बाद भी आप अहंकार करेंगे कि मैंने दिया। लेकिन हमारा अहंकार इतना है कि जैसे हम ही संसार को चला रहे हैं, व्यक्ति यहां पर इस तरह हमें कई बार लगने लगता है, बैठे बैठे सोच में आ जाता है कि अरे कुछ भी नहीं है अभी हम लोगों के पास, जो कि हम वाकई में कह सकें कि हम धार्मिक हैं, हम वाकई में बहुत ऊंचे सोच वाले लोग। और तीसरी बात आपसे कह के अपनी बात पूरी करो, दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, और श्रम। श्रम को हम मानते हैं चारित्र, श्रम की आराधना, ईश्वर की आराधना, ज्ञान की आराधना और श्रम की आराधना। इसी को आप कह लें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जैसा आपको कहना हो। और किसी को सामान्य रूप से देखना हो तो अपने जीवन में वो बढ़ाए, ईश्वर की आराधना बढ़ाए, ज्ञान की आराधना बढ़ाए, श्रम को महत्व दे, श्रम की आराधना करें। कोई भी जो चीज हम हासिल करें वो अपने हाथों से भले प्रकार से करके नीति न्याय पूर्वक श्रम करके हम उस चीज को अर्जित करें, फिर देखिएगा उस चीज का कितना आनंद आता है। शायद ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन का संस्मरण है, वे किसी बहुत बड़े सम्मेलन में और भाषण के लिए जा रहे थे और वो उतरे, छोटी सी जगह पर उनका भाषण था। उन्होंने कह दिया था कि कोई मुझे लेने नहीं आए, हो सकता है कि मैं नाम भूल भी रहा हूं, लेकिन भूल सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वही है। तो
अगर कहीं गलत हो जाऊं तो बाद में मुझे कह दीजिए। एक आध बार जैसे मैंने जर्मनी की जगह पे एक बार जापान बोल दिया था, उसके लिए मैंने एक्सक्यूज भी किया था बात को, किसी ने मुझे सलाह बताया था कि आप भूल से, क्योंकि वर्लिन तो जर्मनी में है जापान में नहीं है, मेरी गलती हो गई थी किसी संडे को मैंने बोल दिया था। ऐसे ही आज भी कह रहा हूं कि शायद ईश्वरचंद विद्यासागर का ही जीवन का है, बंगाल में पैदा हुए वो, या और किसी का हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सुधार लूंगा। तो क्या हुआ कि वो छोटी जगह पर उनको एक लेक्चर के लिए बुलाया, उन्होंने कह दिया कि कोई लेने नहीं आना, मैं आ जाऊंगा, और वो नीचे उतरे तो उसी लेक्चर को सुनने के लिए एक नव युवक बना ठना। हाँ, बना ठना तो जरा बढ़िया से कंगी वंगी कर ली, पट्टी पाड़ ली, चश्मा लगा लिया, जींस पहन लिया, और लॉकेट वॉकेट जो है बाहर लटका लिया, आगे के चार बटन खोल लिए। आज के नौजवान की शक्ल देखनी है तो ये खाता है उसको, और क्या। आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं अगर, तो हमारे अपने युवक की अगर कोई तस्वीर आज है तो इतनी है, इससे कोई बड़ी तस्वीर हमें नहीं देखने में आती, बहुत थोड़े लोगों की देखने में आती है, 10% लोग 90% के साथ तो यही है। इसके बाद भी हम अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, वो नौ युवक उतरा उसमें से, सूटकेस भी लिए थे वो, भले ही खाने को ना हो घर में, बहन की शादी करने को पैसे ना हो, लेकिन भैया घूमेंगे। एक व्यक्ति ने बोला था कि जुल्फ में रखाए पतलून पहने, नहीं यार कुछ इसी तरह का था वो, यानी कहा क्या वो जो पतलून पहने जुल्फ में रखाए को खाए किसी ने, लेकिन ये तो मैंने कि बोले जो किस दिन खाए जुल्फ पर रखाए पतलून पर, तो वो ऐसे निकले और सूटकेस लिए बढ़िया थे, और फिर सूटकेस नीचे रखा। देखो इतना सा सूटकेस, लेकिन अब चूंकि हम बहुत बड़े हैं, स्टेटस है हमारा, एक कुली कुली पुली जबकि उतारा नीचे है खुद अपने हाथ से, और उसको ले जाने के लिए पुली चाहिए, ठीक कोई नहीं था वहां। ईश्वर चंद उतरे थे नीचे, सामान्य सी गैस में थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा यहां वहां, ये ले चलना है क्या, हाँ उठा लो, उठा लिया ईश्वर चंद ने, कहां चलना है, चलो बता दो कहां तक चलना है, भाषा ही हो रहा है रहती है, भाषा ही हो रहती, नहीं तो पैरा कैसे क्रिएट होगा, नहीं तो कोई बुद्धू समझेगा हमको। हमारे टाइम में जब हम एंटेज में पहुंच गए तो फर्स्ट ईयर वाले से बस में बैठे हुए याद आ गए, बस में बैठे थे तो एक दर्द आदमी को मैं खड़े हो गया, उसको बिठा लिया, तो वो ब्रह्म में कहता है परोपकारी, हमने कहा ठीक सुन लिया हमने, फिर हमने कहा किस क्लास में पढ़ते हो, तो बोलता है कि तुम लगता है मैं आया हूं, हमें बड़ा अजीब लगा, हम लोग कुछ मत करो इसको, नीचे उतर करके मुझे आज तक याद है कि मैंने कभी भी इस तरह उलझा नहीं करी, लेकिन पहली बार नीचे उतरने के बाद आधी तो निकाल के दिखाया था उसको आइडेंटिटी कार्ड, आधा निकाल के फिर भीतर रख लिया था, फिर वो कहता था सॉरी सर सॉरी सर, फर्स्ट ईयर में आया था, लेकिन हर काम कितनी सबके जीवन में इस तरह से देखने में आता, जो जितना दुनिया में कम होगा वो अपने को उतना अधिक ताम झाम भारी भरकम दिखाने की कोशिश करेगा संसार। हां ये चलता है, चलन है, फैशन है, तो ऐसी भाषा बोली, ले चल जहां तक चलूंगा पैसे ही तो रहना ना, चले वो देखना आप मजा। उसी सभा में सुनने आया था ईश्वरचंद विद्यासागर का लेक्चर, और उन्हीं से उठवा के ले जा रहा, और वहां पहुंचने के बाद रखवा लिया उसने, कितने पैसे हुए, उसने कहा कोई ईश्वर करने का कोई पैसे वैसे की बात नहीं, तो कहते हैं कुली नहीं है कुछ नहीं, बोले तुम्हारा सामान मैंने ढोया है इसलिए कुली तो हुई, और कुछ नहीं बोले करके आगे चलेंगे। और जब उसने मंच पर उनको लेक्चर देकर सुना तो पसीने पसीने माफी मांगता है उनसे, तो उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख के वो एक ही बात कहते हैं कि देख भाई, मेरे लेक्चर को सुनने तू आया, जो भी सुना हो, तो मेरी एक ही शिक्षा है कि कभी भी श्रम का अनादर नहीं करना, स्वयं श्रम करना, और कोई श्रम करे तो उसकी इतनी छोटी सी कीमत मत आंकना कि दो पैसे ले ले और जा, उसने तुम्हारी मदद की है, उसका सम्मान मन के भीतर। आज के हम अपने नौकर का सम्मान कर पाते हैं? अगर हम बातों में श्रम की आराधना करते हैं तो जो लोग हमारे जीवन में हमें सुविधाएं मुहैया करते हैं, क्या हम उनको सम्मान की दृष्टि से देख पाते हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि माला पहना उनको, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सम्मान करो, मैं ये कह रहा हूं कि कभी हम उनको आदमी की और सम्मान की दृष्टि से देखते भी हैं कि नहीं। जो ठेला चलाने वाला बाहर निकलता है, ए हटो साइड से, पहले तो मारा जा रहा है, अरे मैं कहता हूं मैं निकल जाऊंगा बाबा, मैं राष्ट्रपति नहीं हूं यार, मैं तो महाराज हूं, साधु हूं, मैं निकल जाऊंगा बाबू से, उसको कहा तो तकलीफ देखना हो रहा है, मैं बाबू से निकल जाऊं। लेकिन हमारे साथ चलने वाला क्या कहता है, हजार अलग हो महाराज आ रहे हैं। इससे क्या मानसिकता मालूम पड़ती है, मेरी बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत मेरा ध्यान इतनी ऐसी, आप सोचेंगे कि क्या छोटी सड़ी सड़ी सी बातें देखते रहते हैं, और मुझे उसमें सब ध्यान किया जाता है वहां सब, कि देखो तुम क्या कर रहे हैं। नहीं, जहां कुछ भी श्रम है उसका भी हम सम्मान करें, कोई हमारे लिए सेवा कर रहा है, कोई अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है, उसके पैसे तो हम दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ क्या हम प्यार नहीं दे सकते उसको, क्या उसकी कमी है हमारे पास में, पैसा तो दिया ही हमने, हमने काम भी कराया उससे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो सचमुच हमारे भीतर अच्छे विचार आना शुरू होंगे, बुरे विचार कम होंगे, जो हमारे संस्कार कर गए हैं। अगर हम श्रम की आराधना शुरू करेंगे, दूसरे का सम्मान ही तो कर रहे हैं, ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं, श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जहां ईश्वर पना है, जहां साधुता है, जहां सज्जनता है, उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें अपने जीवन में हम धीरे धीरे शामिल करें, पोलाइटली बहुत साइलेंटली बहुत धीरे से और बहुत शालीनता के साथ एक एक करके इन चीजों को अपने में शामिल कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे अनादि काल से पड़े हुए जो निम्न विचार हैं वे धीरे धीरे तो हटेंगे। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन ऊंचा बने, हम सबके विचार अच्छे बने, मेरे साथ नमोकार करें।
No, no, no.